मंत्र संख्या एक। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यतकिंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध कस्य स्विद्धनम्। अन्वय जगत्याम यतकिंच जगत तत इदं सर्वं ईशावास्यम अस्ति तेन त्यक्तेन भुंजिथा कस्य स्विद्धनम् मा गृध। पदार्थ जगत्याम निखिल विश्व में यत किंच जो कुछ भी जगत स्थावर जंगम प्राणी समूह या वस्तु है इदम यह सर्वम समस्त संपूर्ण ईशा ईश्वर के द्वारा परमात्मा के द्वारा वास्यम आच्छानीय या व्याप्त है। तेन उसके द्वारा प्रदत्त त्यक्तेन त्याग के द्वारा अनासक्त भाव से भुंजिथा भोग करो उपभोग करो। कस्यस्विद् किसी का भी धनम धन के लिए या धन को मा मत गृध लालच करो आसक्त हो। भाव अर्थ इस निखिल विश्व में स्थावर जंगम प्राणी समूह स्वरूप जो कुछ भी वस्तु जगत है अर्थात जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी ईश्वर के द्वारा जो समस्त ब्रह्मांड का नियंता है आच्छादनीय है अर्थात सब में ईश्वर का निवास है। ईश्वर से रहित किसी भी वस्तु की स्थिति है ही नहीं। अतएव उस ईश्वर के द्वारा त्याग किए गए अर्थात प्रदत्त धन से भोग करो। किसी अन्य के धन के लिए लोभ मत करो। कहने का तात्पर्य यह है कि न्यायोचित मार्ग पर चलते हुए जीवन निर्वाह हेतु जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसे ईश्वर के प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कभी भी असंतोष नहीं करना चाहिए। संतोष होने पर दूसरों के धन के लिए लोभ का प्रश्न ही नहीं उठता। इस मंत्र की द्वितीय पंक्ति का एक अन्य अर्थ भी है। ऋषि सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर का दर्शन करता हुआ परस्पर कल्याणकारी वृत्तियों की प्रेरणा प्रदान करते हुए धन की व्यर्थता का प्रतिपादन करते हुए कहता है कि चूंकि सभी प्राणियों में समान रूप से ईश्वर का निवास है अतएव याग के साथ भोग करना चाहिए। त्याग के द्वारा आवश्यकता वाले अन्य प्राणियों की सहायता करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक धन संचय की प्रवृत्ति घातक है क्योंकि भला यह धन किसका हुआ है अर्थात किसी का नहीं। धन एक व्यक्ति के पास सदैव नहीं रहता अतः यह मेरा ही है इस प्रकार का व्यर्थ लोभ नहीं करना चाहिए। टिप्पणी इस मंत्र के द्वारा ऋषि ने सर्वजीव समभाव का उपदेश देते हुए समाज के समर्थ व्यक्तियों को त्याग के साथ भोग की ओर प्रवृत्त किया है। इस प्रकार उसने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया है। इसमें जीवन के तत्व ज्ञान की चर्चा है। ईश और जगत के संबंध का निरूपण है। जीवन लक्ष्य की घोषणा है। चूंकि वह परब्रह्म परमात्मा जगत में ओतप्रोत है अतएव जगत को छोड़कर भागने से आत्मदर्शन नहीं हो सकता। भागने से भगवान नहीं मिलता। जगत के भीतर प्रवेश कर देखने से ही आत्मदर्शन संभव है। इस संसार में किस प्रकार रहा जाए इसकी विधि भी इस मंत्र के उत्तरार्ध में प्रयुक्त तेन त्यक्तेन भुंजिथाह पद से बतला दी गई है। इस भाव को गीता में इस प्रकार बतलाया गया है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्तं सर्वकल्विषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पच्यान्तकारणात्। गीता 3:13। अर्थात सबको भाग देने के पश्चात जो बचता है उसका जो भोग लगाता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऋग्वेद में ऐसा ही निर्देश है। मेधमन्नं विदन्ते अप्रेचेताः सत्यं ब्रवीमि बध इत स तस्य यो नर्यामळः पुष्यति नो सखायं केवलाधो भवति केवलादि। ऋग्वेद 10:117। अर्थात जो अपने सखा एवं मित्रों को न खिलाकर अकेले ही अकेले खाता है वह पाप का ही भक्षण करता है। इस मंत्र में प्रयुक्त ईशावास्यम इदम सर्वम का भाव गीता में भी इस प्रकार दर्शाया गया है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजयः, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव गीता 7:7। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृत्सन्मेकाशेन स्थितो जगत् गीता 10:42। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मुझसे परे कुछ नहीं है, मेरे भीतर ही यह सब जगत सूत्र में मणियों की तरह पिरोया हुआ है। अथवा हे अर्जुन, इस प्रकार बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण चराचर जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण किए हुए स्थित हूँ, इसलिए कोई तत्व ऐसा नहीं जो मुझसे रहित हो। इस मंत्र में प्रयुक्त ओम पद प्रवण मंत्र है, ईशवाचक है। इसमें तीन अक्षर अ उ म अ का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नाभि स्थान से निकलता है, उ कंठ स्थान से निकलता है, और म के उच्चारण के समय ऐसा प्रतीत होता है कि वह बाहर निकल जाता है। इस प्रकार अ से निकलने, उ से उदय होने, प प्रकट होने, स्थित होने और म से अस्त होने, बाहर निकल जाने का भाव प्रकट होता है। अर्थात पूरे ओम से आने, कुछ क्षण रुकने और फिर चले जाने का भाव प्रकट होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो आया सो गया का भाव दर्शित होता है। सृष्टि, स्थिति और लय तीनों भाव ओम में निहित हैं। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है एवं नित्य परिवर्तन का सूचक है।